नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने के आदेश के बाद अमरीकी सेना आज से ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी शुरू करेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा के बाद एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हुईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पश्चिम एशिया संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और वैश्विक कीमतें बढ़ने की चेतावनी दी। हंगरी में संसदीय चुनाव में पीटर मैग्यार की जीत के साथ फिडेज नेता विक्टर ऑर्बन के 16 वर्ष के शासन का अंत हुआ और यानिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस के फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर फिर शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। अब समाचार विस्तार से। होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद अमरीकी सेना आज ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही अवरुद्ध करने की कार्रवाई शुरू करेगी। अमरीकी मध्य कमान के अनुसार ईरानी बंदरगाहों और तटवर्ती क्षेत्र से आने जाने वाले सभी जहाजों पर यह कार्रवाई होगी। हालांकि गैर ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों को आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि अमरीका या उसकी सहयोगी सेना के किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरे नियंत्रण का भी दावा किया है। ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से ईरानी कब्जा तत्काल हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ही अमरीकी शर्तों पर बातचीत करेगा। एक रिपोर्ट।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन ने कहा कि उनका देश शांति और सुरक्षा के लिए संतुलित समझौते को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दोहरे मापदंड इस दिशा में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चिंता बनी हुई है। दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से की तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। यहां किसी भी तरह का टकराव वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर डालेगा। उधर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। इसराइल ने दक्षिण लेबनान के बिंत जबील में एक अस्पताल पर हमला करने का दावा किया है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद होने की बात कही गई है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल सैन्य प्रमुखों के साथ दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध जारी है और अब इसराइल के शत्रु अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने लेबनान में एक सुरक्षा घेरा बनाया है, जिससे सीमा पार से आशंकित हमले रोकने में मदद मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी और प्रयासों की जरूरत है। ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही अवरुद्ध करने की अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल आया है और ये $100 से अधिक हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $0.37 प्रति बैरल हो गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में $105.34 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। एशियाई शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ईरान युद्ध से वैश्विक आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसके कारण बाधित ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि अगले वर्ष भी जारी रह सकती है। एक साक्षात्कार में मुद्रा कोष प्रमुख ने कहा कि जारी संघर्ष की अवधि से इसके दीर्घावधि परिणाम निर्धारित होंगे। उन्होंने कहा कि इसका विभिन्न देशों पर अलग अलग ढंग से असर होगा। संघर्ष विराम से भी कोई तत्काल राहत नहीं मिलने वाली। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूत सईद रजा मुसायब मोतलाग ने कहा है कि भारत, चीन और रूस जैसी वैश्विक महाशक्तियां बढ़ते तनाव के बीच शांति बहाल करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से राजनयिक दृष्टिकोण और सैन्य टकराव से बचने की प्रतिबद्धता के लिए भारत की सराहना की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मीडिया से बातचीत में श्री मोतलाग ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका की हाल की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर हिंसा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने परमाणु हथियारों पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परमाणु हथियार संपन्न देश अन्य देशों पर ऐसा नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। पाकिस्तान में हाल ही की शांति वार्ता पर उन्होंने कहा कि शर्तों को नहीं मानने के कारण ही वार्ता विफल हुई। इस बीच भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने भारत सरकार और यहाँ के लोगों को उनकी एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आयतुल्ला अली खामेनई के मारे जाने के 40 दिन पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नेताओं और अधिकारियों की उपस्थिति के लिए भी आभार प्रकट किया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा सम्पन्न हो गई है। इस दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भेंट की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश सौंपा। एक रिपोर्ट।
दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सहयोग, व्यापार बढ़ाने और व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी अलग से बातचीत की। मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्थिरता तथा पश्चिम एशिया संघर्ष और भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों पर चर्चा हुई। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर डॉक्टर जयशंकर ने वहां रह रहे भारतीयों से बातचीत की। बढ़ते तनाव के बीच उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर की ये यात्रा खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के राजनयिक प्रयासों के तहत है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए अमीशा।
विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हंगरी में हाल के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री और फिडेज नेता विक्टर ओरबन ने हार स्वीकार कर ली है। एक रिपोर्ट।
पीटर मैग्यार ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस परिणाम के बाद श्री ओरबन के 16 साल के शासन का अंत हो गया है। 98.74% वोटों की गिनती के बाद मैग्यार की टिस्जा पार्टी ने 199 सीटों में से 138 सीटें लेकर बहुमत प्राप्त कर लिया है। इससे पार्टी को संविधान और महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया है। विक्टर ओरबन की हार उनके धुर दक्षिणपंथी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं रवि कपूर।
वार्षिक ऑर्थोडॉक्स ईस्टर समारोह के दौरान हैती में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उत्तरी शहर मिलोट में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिटाडेल लाफेरियर में हुई। प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स एमे ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका का सिएटल शहर स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। ये प्रतिमा वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में स्थापित की गई है। सिएटल की मेयर केटी विल्सन और सिएटल स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इसका अनावरण किया। ये प्रतिमा सिएटल के डाउनटाउन में स्थित प्रतिष्ठित वेस्ट लेक स्क्वायर में है। यानिक सिनर ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल फ्रांस में फाइनल में अल्कराज को 7-6, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही सिनर फिर से विश्व में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। आईपीएल में कल मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। आरसीबी के 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 5 विकेट के नुकसान पर 222 रन पर ही सिमट गई। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने के आदेश के बाद अमरीकी सेना आज से ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी शुरू करेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा के बाद एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पश्चिम एशिया संघर्ष में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और वैश्विक कीमतें बढ़ने की चेतावनी दी। हंगरी में संसदीय चुनाव में पीटर मैग्यार की जीत के साथ फिडेज नेता विक्टर ओरबन के 16 वर्ष के शासन का अंत हुआ और यानिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस के फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर फिर शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।